पढ़ा था उसके ऊपर क्या गौर किया। कोई बात, पिछले सबक हमने माशाल्लाह 7 आमाल कर लिए ना, कि जो जन्नत को वाजिब करने वाले हैं। पहली तो बात देखें कि अगर हम इसकी अहमियत को समझ लें कि किस चीज़ के आमाल हैं, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी फीलिंग ही बदल जाए। कहीं भी जाना होता है, आपने उम्रे पे आना था या आप कहीं अमेरिका जाएं, जाने से पहले हमारी तैयारी होती है ना, और वहाँ की करेंसी, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का मौसम सब ढूंढते हैं ना। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने और सुनने से हमारा जहन भी जन्नत के काबिल हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आजकल हम सोचते भी थोड़ा। तो कोई बात शेयर कीजिए, जितने अमल अभी तक पढ़े हैं आपने, इसमें से कोई अमल की कोशिश की या कुछ हुआ, कोई भी चीज़। जी आप फैजा।
मैंने सुबह से जिस अमल पे आज मैंने कोशिश करने की कोशिश करी वो ये थी कि अपने गुनाहों पे रोना, और आज सुबह इत्तेफाक से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ और उमरे का मौका मिला, तो बस मुझे वो यही बात ज्यादा याद रही।
अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। यानी इनको गुनाहों पे रोने का लगा, और आप देखिए कि ये कितनी कम नेकी है ना। अमूमन इस पे दर्स भी नहीं लोग देते। मुझे याद है बहुत पहले के शुरू के दर्सों में से एक दर्स था, लाइक दिल को नरम करने वाले आमाल, और किताब रकाए के हदीस में ना, तो मैंने उस पे दर्स दिया हुआ है, तो मुझे वो बातें याद आ रही हैं। लेकिन अमूमन लोग इन चीज़ों को अब बहुत ही कम डिस्कस करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि रोना उस चीज़ पे आता है ना जिसका एहसास हो। हम एहसास ही नहीं, अब तो हम
हाँ
डंके की चोट पे कहते हैं कि गुना, ये सब करते हैं लो आज के दौर में, अब ये कैसे बचे,
भाई, हम क्या करें, मजबूरी
हम
है।
क्या करें, हमारी मजबूरी है, राइट। जी सदफ, आपको पिछले अमल में से कोई अमल जो याद रहा, अमल में।
मुझे जो सारी मैं ऐसे में सारी चीजों को हर वक्त सोचती रहती, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें मुझे यह है कि इनमें से काफी चीजों का हमें इनकी डेफिनेशन नहीं पता कि ये असल में क्या चीज है। मैं समझती हूँ कि झूठ बोलना अगर है तो उसमें भी उसकी डेफिनेशन भी मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये हर एक पॉइंट जो है इसके मुझे बहुत अंदर डीपली जाने की जरूरत है। मैं सिर्फ इसे कि मुझे खुद को भी नहीं एहसास कि कौन सा झूठ झूठ होता है, और अल्लाह से खुफिया डरना और एलानिया डरना इसकी क्या डेफिनेशन है। मुझे मैं बहुत ज्यादा इस चीज को भी मिस कर रही हूँ कि मुझे इसके अंदर और ज्यादा मुझे इस चीज की डेफिनेशन जाननी है बस।
जी आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आप देखिए कि जब हमें किसी चीज़ की अहमियत का एहसास होता है ना, तो हम उसकी तलब भी रखते हैं, और किसी चीज़ की शिद्दत या उसकी तबाही बर्बादी जो हमारे लिए वो तबाहकुन है, उसका एहसास होता है तो हम उससे बचते हैं ना। सच्ची बात है ये कि हमें इन अमाल की बुराई का पता ही नहीं है। आप ये समझ लें कि इंटेंसिटी का नहीं पता। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, शायद आप समझ जाएं इस बात से, कि पानी है ना, जहाँ ठंडा पानी होगा तो भी हाथ आपके उसके नीचे जाके कंफर्टेबल नहीं होंगे, उबलता हुए पानी के नीचे हाथ रखे तो भी नहीं होगा, लेकिन जब वो ल्यूक वार्म बन जाता है तो वो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप हाथ भी धोते हैं, आप शावर भी लेते हैं, फर्क पड़ता है ना। पानी तो पानी है, पानी की शिद्दत, ठंडा बहुत या बहुत गर्म, ये दोनों इंतहाएं हैं, हमें बीच की राह में रहना है। अब अगर हमें अपने इन गुनाहों को, जो कुछ भी हमसे सुबह शाम होते हैं, इनकी इनके बॉइलिंग वाटर का इमेजिनेशन में ले आए ना, कि हमारे गुनाह जो ये उबलता हुआ पानी है, तो क्या हम इनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। मिसाल देखिए कि जैसे कोई आपसे कहता है कि शावर में पानी बहुत गर्म आ रहा है, ये एक खबर है ना, सुन के एकदम हमें होगा क्यों ये पानी गर्म आ रहा है, अच्छा ठीक है हम सोचेंगे, लेकिन इट्स ओके, चलो वो बुलाते हैं कुछ करते हैं ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचिए, आप अपने ध्यान बाथरूम में जाएं, शावर खोलें, और जैसे नॉर्मली आप समझते हैं पानी है, लेकिन एकदम जब सर के ऊपर पानी पड़े तो खौलता हुआ पानी है। अब पहले वही चीज़ खबर थी, लेकिन अब इसे एक वक्त में आपके लिए वो एक आपका तजुर्बा बनी। इसमें और उसमें फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीखें निकल जाएंगी, आप शोर मचा देंगे, आप बचाओ बचाओ की बात करेंगे, असल बात यह है हमें इस वक्त अपने गुनाहों की शिद्दत का एहसास ही नहीं है, तो इसके लिए फिर ज्यादा और सीखने की जरूरत है। जी और कोई बात आपने कोई महसूस की, आप कोई बात अगर की है तो बता दीजिए।
जी बहुत अच्छा, यही है कि गुनाह से बचना, झूठ नहीं बोलना, गुनाहों की माफी मांगना।
इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल जी। आप निशबन
जी कल हम मगरिब के वक्त गए थे तो ईशा की नमाज के लिए इमाम काबा जा रहे थे और माइक वगैरह उनके इतने, और इतने वो यंग थे, इतने प्रोटोकॉल से उनको लेके जा रहे थे, मैं और वजह से इनका हम दुआएं कर रहे थे कि किस तरह कि इतनी यंग एज में उनको किस तरह इतने बड़े मुकाम में और इतनी इज्जत वाला, क्या क्या था, उनकी माँ की दुआएं थी या उनकी क्या मेहनत थी जो इधर तक पहुंच गया, इतना उनके चेहरे पे नूर और इतनी मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने जो सूरह हशर की आखिरी आयत की तलावत की तो मैं तो इतना ज्यादा रोई थी कि वो मुझे सारी समझ आ रही थी। और उन्होंने कहा कि जन्नत वाले और दोजख वाले
ला
लायस्तवुन,
यस्तवी जन्नत
जी लायस्तवुन, के वो बराबर नहीं हो सकते। अब फिर मुझे बाकी समझ आ रही थी कि पता नहीं मैं जन्नत वाली साइड पे हूँ या दोजख वाली साइड पे, मेरे अमाल किस तरह है। मुझे छोटे छोटे गुनाह इतने बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं कि ये अल्लाह ताला छोटी छोटी बीमारी से निकाल के
सही
खुल
बात
के
है। आप देखिए,
फेंक
जब कुरान समझ आता है ना, फिर मजा आता है। उसी में ना वलो अंजलना हाजल कुरान अला जबल
बहुत
लरअईतहु
मुझे रोना आया था।
खाशिया मुतसद्दिया में हशतिला। आज सुबह हमने एक एक्सपीरियंस किया, आप लोग हमारे साथ ही थे फूड कोर्ट में ना, तो उसके बाद आप ऊपर जब चले गए तो सारा और मैं ही थे, तो ये मेरा वेट कर रहे थे। इन्होंने ना वहाँ खिड़की में से दिख रहा था कि जहाँ हरम की एक्सटेंशन हो रही है ना, एक्सपेंशन हो रही है, तो काम शुरू हो गया हुआ था। दो ड्रिल्स थी, बड़ी बड़ी क्रेनें, तो एक ना आप समझें कि रॉक टाइप कह लें कि पहाड़ी इतनी को रह गई, वो उसको काट रहे हैं ना। बिलीव मी, वो मंजर पहले ये खुद देखते रहे, फिर मेरे पास आ गए इधर, तो मैंने कहा क्या देखा ना, तो कहते हैं कि रॉक है ना, सर इंग्लिश में बात कर रहे थे ये, कि ये एक रॉक है तो ये इसको तोड़ना चाह रहे हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं ना, तो उसके बाद इतनी सी इसमें सुराख होता है ना। अच्छा, मैंने भी इसको लिया, लेकिन मैं उस वक्त मेरा माइंड उसमें नहीं चला ना, तो फिर ये बैठ के तो मुझे समझ आ, क्योंकि सर जाहिर है कि इन्होंने उस तरह से नहीं, मतलब इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा इनका लैंग्वेज बैरियर है अरबी में, तो मुझे समझ आ जाती है कि ये कुरान की कौन सी आयत पढ़ने लगे हैं ना। तो फिर ये कहने लगे कि मतलब उसका खुलासा था कि अक्सल मिनल वो, तो मैंने कहा आप ये पढ़ने लगे हैं कि सुम कसत कुलूबुक मिन बाद ज़ालिक फहिय कल हिजारा, तो कहते हैं हाँ। तो फिर हम, फिर ये मुझे भी उधर ले गए, हम खड़े हुए ना, तो इतना हम दोनों यानी उस वक्त इस चीज को एंजॉय भी कर रहे थे और रोना आ रहा था। ये बार बार ये कह, देखो ये पत्थर कितना सख्त है, लेकिन लोगों के दिल इससे भी सख्त है, कि इस पत्थर को तोड़ने में यानी ड्रिल करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों के दिल हिदायत से इतने दूर होते हैं कि आप तड़पे, बुलाएं, दुआएं करें, माएं तहज्जुदों में रोती हैं, नहीं बच्चों के दिल बदलते। मैं बस बीवियों को जानती हूँ, सारी जिंदगी से तड़पती हैं कि अल्लाह हमारे मियाँ सिर्फ नमाजी बन जाए, नहीं बनते। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका, और मिन बादी ज़ालिका, जब जिंदगी में कोई हादसा हो, जब कोई अल्लाह की कुदरत की निशानी आपको मिल जाए ना, अच्छी या बुरी, अनयूजल बात हो जाए, बस मैं तो इसको यही कहती हूँ, इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाए, वो अच्छा भी होता है, वो बुरा भी होता है, फिर भी ना बंदा बदले ना, तो फिर पत्थर हो जाता है, फिर तो वो अल्लाह कहता है ये बस पत्थरों वाले पत्थर जैसे लोग हैं। तो फिर यानी मैं यही सोच रही थी कि अगर कुरान समझ आता हो तो फिर दुनिया को रिलेट करना कितना आसान है। फिर हमने इतनी देर गौर किया कि ये कैसे बनाते हैं, ये जिस होटल में हम बैठे हैं ये कैसे बना होगा, ये सारे पत्थर ही तो थे, अभी भी ये जितने आप देखते हैं ऊंचे नीचे हैं तो ये पत्थरों पे बना हुआ है, इतनी मेहनत करके ये लोग ये जगह बना रहे हैं, तो क्या हमें लोगों के दिलों को नरम करने के लिए कोशिश नहीं करनी? यकीन करें मुझे ऐसे लगता है कि आज दिल ही पत्थर हो चुके हैं। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि लोग अपने गुनाहों को ऐसे ही लेंगे जैसे बरसे सोके, नबी सल्लम के करीब का ही दौर था, और गालिबन हजरत अनस ने कहा किसी से कि आज के दौर में जिन गुनाहों को तुम हल्का जानते हो, हम नबी सल्लम के दौर में उनको हलाक करने वाला समझते थे, कि अगर ये गुनाह ने किया तो हम तो हलाक ही हो जाएंगे। आज तो नाक पे बैठी हुई मक्खी है, ऐसे उड़ा देते हैं, छोड़ो सब करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को हम निगल जाते हैं, रोना तो बड़ी दूर की बात है ना जी। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई आपका एक्सपीरियंस सिस्टर?
हाँ, बस अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है, ये मुझे
बिल्कुल
बस।
जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं खुद चूंकि पढ़ा के गई तो वही अपने अल्फाज ही गूंजते रहते हैं ना, तो वो मौका तो कम ही मिलता है इस तरह से ज्यादा बात करने का, कुछ करने के लिए, कि कई दफा कल मुझे दिन में आने तक अभी आज वो सारी बातें याद रही कि कितना जरूरी है जुबान का इस्तेमाल। कई चीजें पता है, एक ऐसे ही मौका होता है कि किसी से शिकवे में बंदा जरा सी आवाज ऊंची हो जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं करना, करती है ना, अभी यही तो पढ़ के आए हैं, तो जो है छोड़ो, जिस तरह हो रहा है होने दे। तो मैंने देखा सुकून कितना मिल जाता है ना उसके बाद जी। आप तायरा जी,
जी, घर में रहने का इस्तेमाल करना और बहुत कम बोलना और जिक्र करते रहो अल्लाह।
बेशक, ये तो कामयाबी की पॉइंट्स है ना जी। आप सलमा जी, आपने कुछ सोचा पिछली चीजों को?
जी मैं कल यहाँ से जब बिल्कुल ये रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पूरी चीज़ मेरी बहू ही लगती है इसमें, तो थी मेरे भांजे लगते हैं वो थे, तो उनके साथ मैंने ये पूरी हदीस जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी थी,
शेयर किया
तो
आपने।
अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी, और खासतौर पर जब मर्दों के हवाले से आया कि औरतों को तो है हुक्म करना भी गुना, लेकिन मर्दों के लिए भी देखिए क्या हुक्म है, जे जाए कि उनके लिए बाहर निकलने का हुक्म भी है, रोजी के लिए उन्होंने बाहर निकला, लेकिन उसके अलावा बाकी जाएंगे, तो फिर वही एग्जाम्पल से मैंने कहा देखिए जब हम बगैर दूर के बाहर निकलते हैं वो गाँव की और शहरों की एग्जाम्पल्स के, फिर कैसे चुपालें बनती हैं बैठ के टाइम वेस्ट के लिए क्या, तो मर्दों को भी इन चीज़ों का एहतमाम, तो सारे उस वक्त कहते अच्छा जब इंसान सोचता नहीं ऐसी बात को ना,
बिल्कुल
अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी बाद में जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया मगरिब की अजान में नमाज में, तो जो कल वो तिलावत थी उसके लिए वही जैसे समझ आ रही थी, तो समझे हम सारे इकट्ठे थे मर्ज के
बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको समझ। मेरा तो दिल करता है घोल के अंदर लोगों के दिलों में डाल दूं कि कुरान जब पढ़ा जाए तो इसको समझे। जी आप सुधा।
मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, कल जब मैंने ये देखा था, हमने इस बात पे बात की थी कि जुबान असल में औरतों का मसला होता है और शर्म का मर्दों का मसला, तो और उसमें दूसरी चीज ये थी कि मर्द वो घर में एहतमाम कर रहने का, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि जितना मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को जानती हूँ कि उसमें भी हम मर्दों का कसूर नहीं है कि अगर वो घर में नहीं रहते, मुझे वो भी एक किस्म का अपने औरतों पर उसको लग रहा था कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में कहा है कि हम सुकून का बाइस बने कि घर को उनके लिए सुकून बनाएंगे, तो वो फिर बाहर क्यों
जी,
जाएंगे।
ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा पॉइंट है इनका कि मर्द घर में कब रहेंगे जब औरतों में अट्रैक्शन होगी, और इसमें औरतों को बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। मैं खुद सोचती हूँ कि बाद जब हम औरतें इतनी बेढंगी बेहंगम, और बोलने में भी हमारी खूबसूरती कोई नहीं, हमारे पहनने ओढ़ने में खूबसूरती कोई नहीं, बात करने में खूबसूरती नहीं, मियाँ को एंटरटेन करना हमें नहीं आता, तो वो घर क्या बैठे। देखिए कुछ चीजें मुंह से नहीं कही जाती, ये रवैयों से पता चलती है ना। तो जैसे मुझे किसी की बात याद आ गई कि उनके मियाँ ने कहा मैं तो घर उस वक्त जाता हूं कि जब मेरी मुझे यकीन होता है मेरी बीवी सो गई है, मैं उसकी बातें नहीं सुन सकता ना। यानी देखिए ये एक रवैया है, हालांकि मैं खुद औरत हूं लेकिन मुझे पता है कि औरतों में अट्रैक्शन नहीं होती। मैं अक्सर सिस्टर जिनको भी जहां भी दुनिया में चलते फिरते देखती हूँ, मैं इस नया से देखती हूँ कि इनके मियाँ इनके बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे ये इस किस्म की लग रही है, इनमें कोई कोई अट्रैक्शन नहीं है। देखिए खूबसूरती इस चीज का नाम नहीं है कि आप बहुत गोरे चिट्टे हैं या आप बहुत अमीर हैं या आपके बड़े कीमती कपड़े, नहीं, एक औरत के अंदर डेलिकेसी और एक जिस वक्त में जैसा मौका बंदे का हो वो कर ले। यानी मेरी नजर में एक सक्सेसफुल पर्सन कौन है, जिस वक्त जिस रूप में जिस हुलिये में जिस जगह आप वैसे हो तो आप खुश रहेंगे, मुतमईन होंगे। आपको आप अपने ऊपर देखिए, कई दफा आप यहां पाए ना आप कहते थकन थकन थकन, मुझे तो एक दिन भी थकन नहीं लग रही, शायद मैंने कुछ किया भी नहीं। आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं, गर्मी 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 नहीं। आप देखिए आप बाहर निकलें तो क्या कपड़े पहनने चाहिए कि गर्मी कम लगे। अच्छा आप यानी समझे कमरे में जा रहे हैं तो आपको इस वक्त किस रूप में होना चाहिए, आप बाहर जा रहे हैं नमाजों में तो उधर किधर हो। आप उस वक्त को बस उस तरह उतने छोटे छोटे स्लॉट्स में जिंदगी को डालें। हम ऊपर चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर बहुत सारे लुबादे ना, जिसके साथ फिर हम एक चीज को इंजॉय कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज हमें तकलीफ दे रही होती है। जी सलमा आप कुछ कह रहे हैं?
मुझे एक बात याद आ रही है, मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, कहते मेरे फूफा जी थे उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोजल लाया होता, तो वो कह रहे थे कि बीवी बन जाए तो ऐसी होनी चाहिए कि जॉब पे हो तो वो आखिरी घंटा उसका मुश्किल से गुजरे कि कब घर जाओ, उसे घर जाने के लिए बीवी में इतनी अट्रैक्शन हो तो दुनिया के गुनाहों से वो मर्द शादी से तभी बच सकता है। तो कहते थे कि मेरे
बिल्कुल सही बात
है, जिम्मेदार थे तो वो कहते थे कि मेरा आखिरी घंटा ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कौन सी घड़ी है तो बस मैं घर पहुंच जाऊँ।
जी बिल्कुल, यदि हम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बातें करें, कंपनी दें, मर्दों के साथ दोस्ती करें, दुख सुख पूछे, अच्छा आप क्या सोचते हैं आप क्या बोलते हैं। इसको मैं एक जुमले में बोल दूं कि अपने मर्दों में इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट लें रियली। हम जिस इंसान में इंटरेस्ट लेंगे ना, छोटा बच्चा भी आपके साथ बैठ जाए ना पूछे क्या हाल है क्या करते हैं किधर जाते हैं, तो आप देखिए एकदम वो स्माइली होगा। आप मस्जिद में जाती हैं तो आप देखते हैं सिस्टर्स बैठी होती हैं तो आप थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट लें, क्या हाल है मेरी नई नानती तुम कहाँ से हो क्या, आप देखिए एकदम चेहरा बदल जाएगा, चाहे लफ्ज़ नहीं भी है समझ आएंगे ना, तो एक बॉन्ड बनता है। तो ये चीज़ मर्दों को हकीकत में फिर अट्रैक्ट करती है, और ख़ास तौर पर अब हम दीन पे हैं, देखिए हम सब अब दीन के नाम पे मशहूर हो चुके हैं, हैं हम अल्लाह की नज़र में दीनदार के नहीं, ये अल्लाह को पता है, लेकिन लोगों की नज़रों में हम हैं। अब अगर हम ज़्यादा अपने आप को केयरफुल रखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इससे ये दीन हमारी ज़ात से हमारे घरों में आ जाएगा, और ये एक चीज़ होती है। तो चलें फिर थोड़ा सा आगे पढ़ लें, हाँ, क्योंकि अब आगे और भी बड़े खूबसूरत से अमल हैं, तो सात किए हैं अभी हमने, हाँ इंशाल्लाह। अब आज हम अभी अगला आठवां करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। जन्नत वाजिब करने वाले आमाल, इस सिलसिले का ये हमारा अगला सेशन है। इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 11 से, 11 नंबर पेज है, और हदीस तरतीब के अतबार से 6 नंबर की है। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना और अच्छा इखलाक अपनाना, यानी सात चीज़ें पीछे हो गई थी, दोहराती नहीं हूँ, पीछे दोहरा दिया बार बार। अब आठवीं चीज़ क्या है? अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। आप उस दूसरे कमरे में चले जाएं जी। सातवीं आठवीं चीज़ क्या है? अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना। और नौवीं चीज़ क्या है? अच्छा इखलाक अपनाना। आइए ज़रा हदीस को पढ़ते हैं, फिर इस पर इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है ज़िंदगी को खूबसूरत करने का। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ के मुतालिक दरियाफ्त किया गया जो सबसे ज़्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी। नोट करें ज़रा, सहाबा की तड़प क्या थी कि हमें ये पता चल जाए किन कामों के करने से लोग जन्नत में जाएंगे। आज अमूमन लोग क्या पूछते हैं? क्या तरीका है कि माल ज़्यादा कमा लें? क्या तरीका है कि हमारा वीज़ा अमेरिका का लग जाए? क्या तरीका है कि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए? प्रायोरिटीज़ है ना। आप सहाबा के सवालात की इसको भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके सवालात जो थे वो जन्नत के करीब करने वाले थे।
तो फिर मियां फिर भी बच्चों को भी डांटे, यानी कि मौत को भी गाली गलौज करे, तो उस मर्द का क्या इलाज है? सब फॉल्ट औरत में तो नहीं ना होती, मर्द में भी होती है ना।
जी देखिए, यही अब हम पढ़ने लगे हैं ना। असल में ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसमें इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आइए हदीस पढ़ लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ के मतलब पूछा गया जो सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी, तो आपने फरमाया तक्वल्लाही व हुस्नुल खुल्की। आप दोहराइएगा मिर्ज़ा, तक्वल्लाही व हुस्नुल खुल्की। क्या हैं दो चीज़ें? अल्लाह का तकवा और अच्छा अखलाक। अब ये देखिए हदीस इसके कितने ज़्यादा रेफरेंसेज हैं, और ये बहुत ही सही हदीस है। थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। तकवा का मतलब है परहेजकारी। दरअसल तकवा वो चीज़ है जो इंसान को नेकी की तरगीब दिलाती है, यानी रगबत दिलाती है, मोटिवेशन देती है, और गुनाहों से रोकती है। इमाम बुखारी ने तकवा के मुतालिक इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का ये कौल नकल फरमाया है, क्या? ला यबलुगुल अब्दु हकीकत तकवा हत्ता यदा मा हाक बिही, सॉरी, मा हाक फि सदरी। ला यबलुगु, नहीं पहुंच सकता, अल अब्दु, बंदा, हकीकत तकवा, तकवा की अस हकीकत को, यानी कोई बंदा तकवा की असल हकीकत को नहीं पा सकता। कब तक? हत्ता, यहां तक के, यदा, छोड़ दे, दा दा कहते हैं छोड़ने को, मां जो हाका खटकती हो, फिर सदरी, सीने में। एक स्ट्रेच में क्या हुआ कि बंदा तकवा की असल हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो इसे बिल्कुल ना छोड़ दे। जरा साथ ही साथ इसको देखिए, यानी तकवा सबसे बड़ी पहली चीज क्या है? परहेजगारी, बचना। इसमें बचने का भी मानी है, और इसमें डरने का भी मानी है, ठीक है। अब गुनाहों से रोकना और नेकियों की रगबत देना, ये बड़ी अच्छी बात है। इधर अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें ना, हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है? गुनाहों से बचना तकवा। सब लोग ये कहते हैं ना, गुनाहों से बचो, लेकिन हमने अपने ये जब तफसीर के सेशन में इसको इतनी दफ़ा पॉइंट आउट किया था कि तकवा सिर्फ गुनाहों से बचना नहीं है, नेकियों के मौके को कबूल करना। हमारी जिंदगी में नेकियों के इतने मौके होते हैं, नजर ही नहीं हमारे पास कि उसको कबूल करें। इस वक्त सीख सकते थे, सीख नहीं रहे, सो रहे हैं, पढ़ सकते थे, लिख भी सकते थे, सिर्फ पढ़ रहे हैं। यानी आप नोट करके देखें, दिन में मेरा ख्याल है इस क्राइटेरियन पे आए तो हम सब गुनाहगार हैं। जो नेकी कर रहे होते हैं ना, उससे ज्यादा कर सकते हैं। खाना पका रहे हैं, नेकी है ना, सा जिक्र कर सकते थे तो नहीं कर रहे हाँ। तो नेकी के मवाके को पहचानना भी तकवा है। मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि तकवा की ग्लासेस होगी ना आपके पास तो आपको छोटे छोटे नेकियों के मौके नजर आ जाएंगे, और जब तकवा के ग्लासेस नहीं है ना तो बड़ी बड़ी नेकियों के मौके। आप कहते छोड़ो अब सारी हमने ही थोड़ी करनी है, केयरलेस एटीट्यूड। तो ये चीज बहुत जरूरत है इसके ऊपर गौर करने की, खुद से पूछिए। यहां अपने लिए एक मुहासबे का पॉइंट लिखते हैं कि क्या मैं गुनाहों से बचने के साथ साथ नेकियों के मौके की कदर करती हूं। बात जब हमारे हिस्से का काम किसी दूसरे को दे दिया जाए हम कहते हैं शुक्र है मेरे पर नहीं आई बात, चलो जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली, चलो किसी और को ये काम मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन क्या मैं ये काम अपनी नेकी किसी और को देके दुखी महसूस करती हूँ? अगर करते हैं ना तो आपके अंदर तकवा है। बल्कि इधर आप अगर अपने लिए एक छोटी सी एक्टिविटी लिख लें, तीन ऐसे पॉइंट नोट करें, याद करें अपनी मेमोरी से जहाँ तक जा सके बैक में, तीन ऐसे मौके नोट करें जब आपके पास किसी नेकी का मौका आया था लेकिन आपने वो की नहीं, आप जी आपने उसको छोड़ दिया, और उस पर फिर रिग्रेट करके इस गुनाह पे रोना है। फिर इसको उस पे साथ जोड़ लें कि आपने इस गुनाह पे रोने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला मैंने उस नेकी को क्यों जाया कर दिया। मसलन कई मौके होते हैं, कभी हमें ऑफर मिलती है हमारे घर ये कर दिया जाए, हम कहते हैं नहीं कौन अपना घर गंदा करे, चलो नहीं करते, कोई और कर लेता, हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, इसी तरह के मौके हम। तो दूसरी बात ये जो कॉल है इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि दिल में जो चीज खटके उसको भी छोड़ दे, यानी इसको समझिएगा बड़ा बारीक नुक्ता है, यानी आप मुत्तकी हो ही नहीं सकते जब तक वाज़े गुनाह तो और बात, हराम तो और बात है, मकरूहात तो और बात है, डाउट्स जो चीज दिल में शक पैदा करे उसको भी ना छोड़े। बात समझ रहे हैं? देखिए अल्लाह ना करे इस क्लास में मुझे पता है कि शराब है, मैं इसको तो नहीं पीऊंगी। अगर मुझे शक पड़ता है कि इसमें शराब की ये कोई समझे कि 10% कोई शराब से बनी हुई चीज डली हुई है, नहीं पीऊंगी। लेकिन तकवा क्या है कि अगर मुझे इसमें 1% भी शक पड़ जाए कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो अल्लाह ने मना किया, तो मैं इसको ना छोड़ूंगी, तकवा नहीं आएगा। और ये कितनी केयरफुल कैफियत है अगर हम इसके ऊपर गौर करें। तो लिहाजा इससे पता ही चलता है कि मुत्तकी बहुत कीन होता है, कीन ऑब्जर्वर, चीजों की छोटी छोटी चीजों को लेता है, छोटी छोटी चीजों पे आता है। बस जब आप देखिए जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं, मसला आप देखिए कि हमारे पास मौके होते हैं ऐसे जहां हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। मिसाल देती हूँ क्योंकि करंट चीजें जो होती हैं वो इंसान को फायदा देती हैं। आप कहीं भी जाते हैं दूसरों के बीच में आप भी मिल जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पहले दिन इस होटल में आए और नीचे उन्होंने वो फ्री गावा शावा दे रहे होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड भी साथ थे इधर थे या किसी और होटल में ना किसी और जगह मदीना में हम किसी को मिलने गए, तो वहाँ वो उन्होंने लगाया होता है अपना डेस्क ना, तो हमें देख के उसने ऐसा किया ना, तो इन्होंने फिर जाके कहा यानी किसी भी तरह हमने उनको बताया कि हम यहाँ रहते नहीं हम गेस्ट हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं यानी गेस्ट है तो सबके लिए जो भी आता है उसको वो दे देते हैं। अब तकवा ये डाउट है ना कि हम चूंकि इस होटल में रह नहीं रहे तो क्या हमें हक है कि यहाँ से खा पी लें? तो फिर उस दिन ये बात समझ आई कि वो हर एक कानेल को गेस्ट के गेस्टों को भी पूछते हैं, एक जनरल है और एक असल में, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी चाहिए। आप फ्री बफे में गए हम वहां से खाना साथ ला सकते हैं कि नहीं, क्या हम और ले आए या फिर अपना लाए? नहीं जी जी आपके अब आपने मुझसे ही पूछ लिया जी, आप बताइए। देखिए आप बिल्कुल आप इस तरह तो अगर वहां जाके खाएं और साथ भर के प्लेटों में ले आते हैं डबल खाना आता है तो वो तो ऑफ कोर्स कभी भी नहीं है। सिर्फ एक एक्सीडेंटली ऐसी कैफियत है, आपने अपने बच्चे के लिए डाला प्लेट में या आपने मियाँ के लिए डाल दिया या बहन के लिए, कोई होता है ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब उन्होंने नहीं खाया, जो चीज आपके टेबल पे आ गई वो फिकेगी, ये डन है, उसको फिर आप ले और उसको खोल के सामने ले आए, नैपकिन में रखे उनको बता दें कि ये हमारा लेफ्ट ओवर है, फिर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी सोच से पहले बहुत सारा भर लें कि चले अब बाद में ये लेफ्ट ओवर होगा, तो वही बात याद रखिए, माँ हा कभी माँ हा का विसदरी। ठीक है, तो ये एक अंदर एक चौकीदार है, मैं तो कहती हूँ तकवा का होना चौकीदार है, अंदर अल्लाह ने बिठाया हुआ है गार्डमैन, वो क्लिक क्लिक करता रहता है ये ठीक है ये गलत है। और जब फितरत पे आप रहते हैं ना तो आपके अंदर से आवाज आती है, और फितरत से हटते हैं तो आवाजें फिर अपनी भी नहीं आवाज समझ आती। फिर इसी तरह आप देखिए हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं कि तकवा से मुराद नफ्स को शिर्क और आमाले सहिया से बचाना और आमाले सालेहा पर मुदावमत इख्तियार करना है। मुदावमत क्या होती है? हमेशगी, दवाम से। बड़ी प्यारी तारीफ है ये, और मैं अभी ये तारीफें तकवा की पढ़ रही हूँ तो मुझे एक सीडी याद आ रही है, रमजान और तकवा। आप साथियों को याद होगी पिछले रमजान से पहले सैकड़ों की तादाद में बनकर ये बटी थी, उसमें तकवा की इतनी तारीफें, बल्कि आप लोग अभी भी रमजान जो आ रहा है उससे पहले उसकी कॉपीज बनवा के दे, उसमें हमने तकवा की 8-9 तारीफें, डेफिनेशंस और उसकी डिस्क्रिप्शन थी, हर तारीफ दूसरे से फर्क थी। तो उसी में से ये कुछ मुझे इसमें नजर आ रही है कि नफ्स को शिर्क से बचाना, तो आप कह सकते हैं कि आप मुत्तकी बनना चाहती हैं तो फिर आपको शिर्क से बचाना होगा, फिर आपको अपने अमाल को बुराइयों से, अमाले सहिया से बचाना, और तीसरी चीज अच्छे आमाल हमेशा करना। ये पहली दो बातें तो आसान है, समझ आ रही है ना, शिर्क से बचना हम सब जानते हैं, बुरे कामों से बचना। ये जो आमाले साला हमेशा करना, इससे क्या मुराद है इसको समझ लीजिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। और वो क्या है कि देखिए कभी कभी अच्छा अमल हर एक से हो जाता है, यानी एक जुमला लिखे, फाजिर से फाजिर इंसान, गुनाहगार से गुनाहगार इंसान से भी कभी कभार नेकी हो जाती है। आप खुद देखते हैं बड़े सियाकार बदकार लोग होते हैं, कभी बहुत सखावत भी कर देंगे, किसी जगह 1 लाख का डोनेशन का चेक भी भेज देंगे, उम्रे पे भी आ जाएंगे, किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर वहां कोई ना कोई काम भी अच्छा कराएंगे ना, लेकिन नेकी को हमेशा करना ये मुत्तकी का नसीब होता है। कितनों को बात समझ आई है? तकवा क्या है? ये आपकी हैबिट बन जाए। मिसाल है आप देखिए ना कि कोई आता है हमारे घर तो हम थोड़ी देर के लिए उसके सामने बहुत अच्छे हो जाते हैं, नाइस पोलाइट, लेकिन हर वक्त नाइस और पोलाइट रहना बच्चों के साथ, नौकरों के साथ, घर वालों के साथ, ये मुश्किल है। मुत्तकी कभी कभी नेकी नहीं करता, नेकी उसका लिबास होती है, ये मुराद है। तो अब आप सोचिए कि तकवा का मियार कितना सख्त है। बिल्कुल शाबाश, यानी वो आपके रगो रेशे में रच बस गई। जैसे एक होता है कपड़े के ऊपर ब्लॉक लगा देते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, चमकती हुई खूबसूरती है, लेकिन जो ही धोएंगे या पहनेंगे उसकी चमक मांद होगी। लेकिन एक है जो कपड़े के अंदर आपके प्रिंट है, वो कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो प्रिंट नहीं हटेगा। तो तकवा के आपके अंदर नेकियां रच बस जाए, और इसको लेके अपने ऊपर देखिए तो बड़ा कठिन में आ रहा है। हम कहते हैं रमजान में नेक हो जाएंगे, उम्रे पे आए हुए हैं तो बहुत नेक है माशाल्लाह, असल तो आप देखिए आप यहाँ भाग भाग के अपने मर्दों को जाता आता देख रहे हैं, खुद भी 5 नमाजों में जा रहे हैं ना, क्या ख्याल है ये तकवा आ गए मुत्तकी बन गए? नहीं, ये तकवा उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप जहाज में यहाँ से जाके अपने मुल्कों में पहुंचेंगे। फिर कितने लोग फजर जोहर असर मगरिब में जाते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग यहाँ आके टू मच इबादत करते हैं, बस लोग 4-4, 5-5 घंटे हरम में बैठे रहेंगे, और मतलब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बात है, खूबी की बात है, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन यहां से जाते क्या होता है? फिर वही मसला है, वो सेम बात जो रमजान और ईद के दिन का फर्क है कि रमजान में नफिल पे नफिल भी है और ईद के दिन हो सकता है कि बहुत सारों की फजर भी कजा हो। ईद की नमाज जो नफिल है उसको पढ़ने पर कितने झगड़े हैं, मस्जिदें अलग हो जाती हैं, दो दो ईदें बन जाती हैं, लेकिन ईद ही के दिन की फजर की नमाज में अक्सर लोग नहीं जा पाते मस्जिद में जो फर्ज है। तो नेकियों को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना जी बिल्कुल। फिर आप देखिए तकवा का मुकाम दिल है, जैसा कि एक हदीस में है आपने फरमाया अत तकवा हा हुना व युशीर इला सदरी ही। अब ये आप मेरी तरफ देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बात करते हुए कहा अत तक्वा हा होना, ऐसे जैसे सीने पर लगाते हैं ना, तक्वा यहाँ है, यहाँ से मुराद दिल, व यशीरु और इशारा किया इला सदरी ही अपने सीने की तरफ, यानी तकवा का मुकाम क्या है? दिल। यानी कोई आपसे पूछ सकता है कि तकवा कहाँ होता है? आंखों में होता है, हाथों में होता है, हाँ होगा, लेकिन इसकी जो रूट है ना अंदर वो दिल है। आपका दिल तकवा वाला बन गया तो आंखें खुद ही बन जाएंगी, दिल का मुत्तकी कानों का भी मुत्तकी होगा, हाथों का भी होगा, जुबान का भी होगा। दिल खराब है तो बाकी बातें खराब है। फिर तकवा ही वो चीज है जो अल्लाह ताला तक पहुंचती है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के बारे में क्या फरमाया, सूरत हज की आयत नंबर 37 है, लन यनालुल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहुत तक्वा मिनकुम। अल्लाह को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते और ना ही इनके खून, बल्कि इसे तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। ये चेक कीजिए थोड़ी देर, ये आवाज कौन सी आती है? ये कल भी था तो मुझे ऐसे लग रहा था कोई वॉशरूम में है ना। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अगर कोई ऐसा यहाँ है तो उसको बंद कर दे, वो इसमें रिकॉर्डिंग में आती है, इधर नहीं है। ठीक है जी, तो आप देखिए कि जब कुर्बानी का गोश्त हम काटते हैं तो गोश्त तो हम खाते हैं, खून सारा जमीन में चला जाता है, अल्लाह को क्या जाता है? हमारा तकवा जाता है, किस नियत से ये काम किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने का हुक्म दिया है, जिनमें से 3 आयात वो हैं जो हर खुतबा जुमा, खुतबा ईद और खुतबा निकाह वगैरह में पढ़ी जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को अपने अंदर अल्लाह ताला का तकवा यानी डर पैदा करने की रग़बत दिलाते थे। अब वो कौन सी आयतें क्या थी इसको हम देखते हैं। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा ईद के दौरान अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया, यानी आपका जो खुतबा शुरू होता था ना अमूमन इसी से होता था, इत्तकुल्लाह। और सूरत निसा की आयत पहली खुतबा निकाह में चलती है ना, या अय्युहन्नासु इत्तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, नहीं मिन नफ्स वाहिदा, यानी उसमें 2 दफा तकवा की बात आती है। सूरत निसा की पहली आयत में 2 दफा तकवा की बात है, जो अल्लाह के नबी खुतबे में भी पढ़ते थे और निकाह के खुतबे में भी पढ़ते थे। फिर इसी तरह आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर रवाना होते तो अल्लाह ताला से इस सफर में नेकी और तकवे का सवाल करते थे। याद है सफर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाज़ल बिर्र वत्तक्वा। कौन सी दुआ है? लंबी तवील दुआ जो हम एक तो हम पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना, लेकिन वो दुआ जिसके अंदर हम बहुत और तवील दुआएं बहुत ज्यादा चीजें मांगते हैं, और इतनी खूबसूरत वो दुआ है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो वाकई ऐसे लगता है सब कुछ अल्लाह के हाथ में दे दिया, जिसको मुझे तो बिल्कुल ऐसे फील होता है कि सब अल्लाह को सौंप दिया, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ और मैं वहां से जब पलटूंगी तो इंशाल्लाह ताला मेरे लिए कोई बुरा मंजर भी नहीं होगा। तो आप देखिए कि इस दुआ में इंसान क्या दुआ करता है, ये लंबी दुआ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं इसके अल्फाज आपके सामने रख देती हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 दफ़ा पढ़ते, फिर सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ। इतनी दुआ तो आम है ना, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है ये। फिर आप क्या कहते हैं, اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى। ये है हमारे मौजू से मुतालिक, ए अल्लाह हम सवाल करते हैं आपसे इस सफर में नेकी का और तकवे का। वमिन अल अमली मा तरदा, और उस अमल का जिसको आप पसंद करें। मैं जब भी सफर में होती हूँ तो ये पढ़ती हूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि सफर में नेकी और तकवा की बात क्यों अल्लाह के नबी ने कही, लेकिन जब मैंने इस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे समझ आया कि सफर में इंसान ज्यादा बहकता, मस्ती आ जाती है, मूड चेंज हो जाता है। आप देखिए जब हम अपने घरों में रूटीन लाइफ में होते हैं ना, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, नमाज रोजा सब कुछ, कोई इतना एक्सपोजर भी नहीं होता। जूं ही सफर, और सफर भी खास तौर पे वो जिसको आप हनीमून कह दें या जिसको वर्ल्ड टूर कह दें या आप जरा दुनिया के 4 मुल्कों में जाएं, साथ ही ऐसे लगता है मादर पिदर आजाद। तो अल्लाह के नबी कहा करते थे इस सफर में मैं नेकियां कमाऊं गुनाह ना कमाऊं। फिर आगे और भी दुआ कर, अल्लाह हवन अलैन सफर न हाजा वतना बोदा हूं, اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من واسع السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل। इंशाल्लाह हम सफर के बारे में कुछ करें, अभी हमारे सफर शुरू होने वाले हैं ना, मक्का से मदीना का ट्रेवल है, कल मजाफात का है, तो इंशाल्लाह हम सफर के आदाब भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना ही काफी है कि अल्लाह के नबी ने सफर के दौरान भी तकवा मांगा, तो फिर ये कितनी अहम चीज होगी। फिर इसी तरह से सहाबा कराम को कहीं भी रवाना करते वक्त आप यही नसीहत करते थे, जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो, इत्तक़ल्लाह मिन हैसु यानी जहां भी तुम रहो जाओगे अल्लाह से डरो। और सच्ची बात है, आप मशरिक में जाएं या मगरिब में जाएं, ईस्ट हो या वेस्ट है, आप दुनिया के बहुत एडवांस मुल्कों में चले जाएं या थर्ड वर्ल्ड में चले जाएं, अल्लाह का तकवा आपके साथ होना चाहिए। बाज लोग कहते हैं अब यहाँ भी कौन अल्लाह से डरे, अब यहाँ भी कौन गुनाह छोड़े, लो जी यहाँ तो सब करते हैं, सब करेंगे, आपने नहीं करना। इसलिए आज हमारा अवलीन फरीजा ये है कि अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, ताकि वो हमारे तमाम मामला दुरुस्त फरमा कर हमें कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर दे। जी, यहाँ पे तकवा की बात पूरी हुई। अब मुझे आप बताएं कि आप क्या समझे हैं, यानी इन सारी बातों की रोशनी में आप क्या समझें कि आपको जन्नत लेनी है और जन्नत में जाने की शर्त तकवा है, तो तकवा को आप फिर कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए। जी सदफ, आपको क्या समझ आई है? बिल्कुल शाबाश, यानी फूक फूक के कदम रखना है, बिल्कुल सही। जी आपको क्या समझ है फैजा?
मुझे ये समझ आया कि हर चीज करने या बोलने से पहले सोचना।
केयरफुल, देखिए मुनाफिक की एक अलामत क्या है, ला यशुरून। मुझे लगता है तकवा वाला बंदा वो है जो शऊर वाला है, बोलने से पहले, बात करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले सोचता है कि इसके सीक्वेंसेस क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो आप अगर इन कोड वर्ड्स को भी अपने साथ लिख लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हमें अमली जिंदगी में रहनुमाई मिल सकती है। और ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, इसको आप किसी भी लंबे से पेपर पे लिख के ऐसी जगह पे अपने साथ रखें, सेलफोन के पीछे चिपका दें, अपना कोई बुक मार्क बना लें, ताकि अक्सर ही नजर पड़ती रहे तो हम अपने लिए इसकी कोशिश करते रहें। जी शिवाना, आप जी बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है कि गुनाहों को लाइट नहीं लेना। आप देखिए जिम्मेदारियों को भी लाइट नहीं लेना। एक तो गुनाहों, तकवा में ये बात जहन में रखिएगा, सिर्फ गुनाहों से बचना नहीं है, नेकियों का करना भी है, ठीक है। तो अब आपको अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी, अल्लाह ने आपको किसी मुकाम पे पहुंचा दिया, तो आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप कहते हैं मेरा मूड नहीं, आज मेरी मर्जी नहीं, आज मैं ये मजबूरी, आज मेरा ये मसला, आज मेरा ये, तो ये तकवा की कमी है ना। तकवा की कमी, मुझे लगता है तकवा बंदे को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आप खुद अपने मुहाफिज बन जाते हैं, आप अपना साइन इन साइन आउट खुद करते हैं। कोई क्या कहेगा मुझे अगर मैं काम नहीं करूंगी? मैंने आपसे कहा कि आज हम यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, मैं ना आती, आपने मेरा क्या बिगाड़ना था? लेकिन मुझे नींद ना पड़े, मैं खुद को माफ ना करूं कि मैंने आपको कहा मैं आऊंगी, मैंने आपको उम्मीद दिलाई और मैं खुद नहीं आई। ये तकवा मुझे लगता है कि बस वो दिल को पकड़ने वाली कैफियत का नाम है। जी आप ताहरा?
वही, जब दिल को डॉट हो, आप फील करें कि ये मुझसे गलती है, यानी कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप उससे बचें।
जी बिल्कुल, यानी अपने दिल के अंदर भी किसी चीज का अंदेशा ना हो। जी आप शिवन,
सांप वाली भी मिसाल जो आप देते थे,
बताइए।
4,000 से ज्यादा किस्में सांप की हैं और सिर्फ उनमें से जो पॉइजनस या जहरीले होते हैं वो 200 के करीब हैं, लेकिन हम किसी भी कोई भी सांप सामने आए तो हम उससे सबसे डरते हैं।
यानी इन्होंने जो बात कोट की है वो बहुत अच्छी कोट की है कि सांप जो है ना, उसके सिर्फ 2% सांप जो है ना वो तक जहरीले होते हैं। यानी 100 सांपों में 2 जहरीले, 98 कोई नहीं जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ उस 2 के खौफ से हम 98 को भी नहीं पकड़ते। सांप का तो नाम इतना बुरा लगता है, तो गुनाह क्या है? ये भी सांप है। तकवा क्या है कि बंदा हराम के खतरे में, मकरूह के खतरे में, शुबे के खतरे में हलाल को भी छोड़ दे। ये चीज इंसान को इंशाल्लाह फिर बहुत ज्यादा केयरफुल भी बनाएगी और मुख्तात जिंदगी होगी ना। और यहां मुझे हजरत उमर की बताई हुई मिसाल भी याद आ रही है, जब किसी ने उनसे पूछा था कि ये सीधा रास्ता क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, तो कहा कभी किसी खारदार झाड़ी पे से गुजरे हो? कहा गुजरे हैं। कैसे गुजरोगे? तंग रास्ता और दोनों तरफ जो है कांटे हैं। तो उसने कहा कि अपना दामन बचा लूंगा, कपड़े समेट लूंगा, फिर एक कदम रखूंगा, फिर दूसरा। तो कजा का तकवा, ये तकवा है। मुझे लगता है ये दुनिया की रोड बड़ी कांटेदार है, शैतान ने पर्दे लगाए हुए, इधर इधर खूबसूरती है, ये है वो है। तो मैं सोचती हूँ अक्सर, जैसे मैं ये अभी यहाँ भी आ रही थी ना, तो आपको पता कि नीचे मॉल है, तो मैं सोचती थी कि जो लोग इन होटल्स में रहते हैं, हम सभी को भी मौका मिलता है ना जब भी कभी, तो कितना बड़ा लोगों का इम्तिहान है। हरम से निकले, बाद में जमीन पे नमाज पढ़ी, बाहर रोड पे, सड़क पे, और कमरे में आने से पहले बीच में जो ब्रांड्स पड़े हुए, आप जरूरत की चीज कोई ले लेते तो कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप नमाजों को छोड़कर या नमाजों के बाद पूरा वक्त बाजार में गुजार दें तो ये भी तो फिर कोई तकवा नहीं होगा ना। तो ये एक आजमाइश होती है जब हम ऐसी जगहों पे अल्लाह के हुक्म से रहते बैठते हैं कि जहाँ रास्तों में दुनिया बहुत होती है, तो फिर वही बात है, सर मुंह छुपा कर सीधा आंखें बंद करके ऊपर आ जाओ और सीधा नीचे निकल जाओ, वरना तो फिर यहाँ आके भी अगर दुनिया ही इकट्ठी कर ली तो फिर वहां क्या होगा। कई लोग वक्त जाया करते हैं, इधर हकीकत में वक्त बहुत कीमती है, हर जगह कीमती होता है, यहाँ तो और भी कीमती है, तो लिहाजा अपने वक्त का सही इस्तेमाल भी तक हुआ। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, अखलाक। ये क्या है? अच्छे अखलाक में दूसरों का अदब एहतराम करना। अब इसको जरा नोट करें, और खास तौर पे सदफ आप नोट करें। पहली बात क्या है? दूसरों का अदब एहतराम करना। हमारे यहाँ अखलाक को क्या कहते हैं जी? स्माइली, औरतें मर्दों को स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, आप दावतें कर रहे हैं, खिला रहे हैं। नहीं, अच्छा अखलाक क्या है? नंबर एक, दूसरों का अदब एहतराम, रिस्पेक्ट द अदर्स। ठीक है, फिर दूसरी चीज अच्छे अखलाक में क्या? सच बोलना, फिर आजजी और इनकिसारी इख्तियार करना, बींग हम्बल, हाँ, फिर एहसान करना, मोहसिन बन के जीना, फिर ईसार करना, यानी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, यू सेरूना अला अनफुसिहिम। फिर राज की हिफाजत करना, अल्लाह अकबर, अच्छा अखलाक कितना मुश्किल है,
किसी
आप
ने कोई
देखें
बात कही है तो उसको
जी। फिर माफ करना, और फिर अदल और इंसाफ करना, मामलात में नरमी इख्तियार करना, बुर्दबारी इख्तियार करना, शर्मो हया इख्तियार करना, शफकत और रहमत के लिए, यानी शफकत और रहमत होना, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत करना वगैरह, सब अफाल ही इसमें शामिल है। सच बताएं, हमारे यहाँ अच्छे अखलाक का ये मेयार है, इसमें तो पूरी शख्सियत आ गई। हम किसी के स्माइल को या किसी के बहुत ज्यादा हंसते को कहते हैं इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। बात जब आपने लोगों को देखे ना, कुछ लोग होते हैं बहुत हंसने बोलने वाले, हॉस्पिटेबल होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, या जरा फर्क भी नहीं रखते औरतों मर्दों का, बस खुश रहते हैं, तो कहते हैं इनका अखलाक बड़ा अच्छा है। लेकिन अखलाक में कितना कुछ आता है इसका हमें अंदाजा नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के लिए फरमाया, और बेशक आप बहुत उम्दा अखलाक पर हैं, वह इन्नक अला खुलुकिन अजीम, सूरह कलम की आयत 4 है। यानी अल्लाह के नबी हकीकत में चलता फिरता कुरान थे। हजरत आयशा ने आपके बारे में ये बात कही थी कि तुमने सूरत मोमिनून की इब्तदाई आयतें नहीं पढ़ी, तो अल्लाह के नबी बिल्कुल ऐसे ही थे, कद अफलहल मोमिनून से लेके वारिसून तक। फिर इसी तरह कई हदीस से ये बात पता है कि अल्लाह के नबी कबल अस नबूवत भी तकरीबन तमाम ही अखलाकी खूबियों से मुत्तसिफ थे। मुत्तसिफ से क्या मुराद है? यानी ये वसफ आपको मिला हुआ था, लेकिन नबूवत के बाद इनमें मजीद वसत आ गई। आज जरूरत इस अमर की है कि हम भी कुरान और सुन्नत में बताए गए अच्छे अखलाक व आदात को अपनाएं और बुरे अखलाक को छोड़ दें। मगर सूरत हाल यह है कि इस्लाम के अखलाकियात के वसी बाब को छोड़कर अहले इस्लाम ने दौरे हाजिर के कुफारो तवागीत, तवागीत तागूत से को माशरती तश्कील और आदात अखलाक की तालीम के लिए पेश नजर रखा हुआ, जिसका नतीजा रब के गजब और उम्मत मुस्लिमा की तबाही के सिवा और क्या हो सकता है। यानी आज आप देखिए कि अखलाक की क्या किस्में, एक होता है कमर्शियल अखलाक, आप किसी भी दुकान पे जाएं, एकदम अंदर से एक औरत बड़ी हाय बाय करती हुई आपसे बात करती है, बाद दफा सेल्समैनशिप जिसको आप कहेंगे, बाद दफा कुछ लोग ब्रोकर होते हैं, बीच में होते हैं, वो बीच में अपने प्रॉफिट के लिए आपको माइल करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए मीडिया, मीडिया पे जो एडवर्टीजमेंट होती है ये सारा अखलाक दिखाया जाता है ना। बाद दफा हम कहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं इनके अखलाक बड़ा अच्छा, जाते बोतल पूछते हैं, वो बोतल क्यों पूछते हैं आपसे, ड्रिंक क्यों पूछते हैं, कि उन्होंने आपको इन्वॉल्व करना है। किसी भी जगह आप जाएं जो बहुत इधर स्पेसिफिकेटेड किस्म का माहौल है, नहीं पहले ये बताएं कॉफी पियेंगे कि चाय, फिर बात शुरू करेंगे, ताकि एक दफा कॉफी पे 10 रुपए लगा लें या जितने की भी आती है, और फिर इनसे बात करके डील में एक इनसे कई लाखों ले लेंगे। तो ये अखलाक नहीं है, ये किसी मोटिव के साथ है। अच्छा अखलाक क्या समझ आया है? मैंने ये जितनी चीजें पढ़ी है ना, मुझे इसके बाद ये लगता है कि अच्छा अखलाक क्या है, दुनिया के किसी भी फायदे को पीछे करके ऐसी चीज जो बंदे का کی شخصیت کیسا بنے. اصل میں اس پہ سب پہ ڈیٹیلز بہت کی ہوئی ہم نے پہلے سے. مجھے وہ سیریز یاد آ رہی ہے جس میں خلق کی بات ہم نے کی تھی, یعنی اخلاق اے ٹو زی بھی ہے, اور ایک اسی طرح سے ایک اور سیریز تھی ہماری دل کو بدلنے والی. تو اس میں بتایا تھا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں تاکہ آپ پھر شاید شوق میں اس کو بھی سن لیں. خلق کہتے ہیں پرانا ہونا. پرانا ہونا کیا مطلب اخلاق؟ پرانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کی ذات کا حصہ بن جائے, ٹھیک ہے, جو کپڑا پہنتے رہتے ہیں پہنتے رہتے ہیں وہ پرانا ہو جاتا ہے. اخلاق بندے کی شخصیت کے اوپر سے کوئی اوڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے مہمانوں کے سامنے پہن لی پھر اتار دی. کسی ڈرائنگ روم مینرز کو آپ اخلاق کے نہیں, اخلاق کے جو آپ کی شخصیت کو, جس کو آپ کہتے ہیں یوزڈ ہو گئے, یوزر فرینڈلی, سمجھ جائیے اخلاق, یعنی وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. آپ کو اس کے لیے پوز نہیں کرنا پڑتا. مثلا آپ دیکھیے نرمی سے بات کرنا. اب وہ عورتیں جو گھروں میں نوکروں پہ چیختی ہیں, مرد میاں کے ساتھ چیختی ہیں, یا بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سخت کلامی کرتی ہیں, کیا خیال ہے وہ اچھے اخلاق والی ہیں؟ گو کہ وہ اپنی دوستوں کے آنے پہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہوں. اچھے اخلاق کیا ہے؟ جس کے لیے سوچنا نہ پڑے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ آپ کچھ بولنا چاہیں, کیا سمجھے آپ؟ دو جملوں میں کچھ پیش کیجیے اس کو. جی آپ صدر, کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا اخلاق رکھنا بہت مشکل ہے, ریئلی اٹس ٹرو. دیکھیے مجھے تو جتنی بھی یہ چیزیں پڑھتی جا رہی ہوں نا, اتنا سمجھ آ رہا ہے دیر از نو شارٹ کٹ. یہ جو ہم نے بائی پیچنگ والا اسلام رکھا ہوا نا, ایک پیچ لگا لیں گے تو مسلم ہو جائیں گے, ادھر ایک ٹکڑا جوڑ دیا, وہ جیسے وہ پیوند کاری ہوتی ہے نا, ٹرو مسلم وہ ہیں. دل کے راستے آپ ان کا اسلام شروع کریں. آپ اللہ کے نبیوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں, صحابہ کی پڑھتے ہیں, ان میں جھول کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ٹیلر میڈ تھے, اندر سے ان کا دل بھی متقی تھا. اب جتنی دیکھیں, اب ماشاءاللہ نو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا, اب ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تو کیا شخصیت بنے گی؟ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ایک چیز بن چکی تھی اس کے اوپر کوئی آپ نے چپکا دی چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ آپ کے اندر ہے. آج ہمیں ایسی مائیں بننا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کا وہ خوبصورت روپ بنا دیں کہ جو پھر ان کو جنت کے قابل کرتے. اور یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, یہ صرف ایک عمرے پہ بچوں کو لے آنے والا بھی کام نہیں ہے. کتنے لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وہ ایک قسم کا فن نہیں ہے کہہ لیں. چلے بچوں کو اتنا فائدہ ہو جائے, اسلامک ماحول ہی دکھاتا ہے, اس سے زیادہ کوشش نہیں ہوتی. یہ فل ٹائم کام ہے. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے اس دنیا میں آ گئے نا, اب بس وہی کہتے ہیں نا کہ ڈبویا مجھے ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا اور توڑ کے پھینک دیا جاتا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کاش میں کوئی چڑیا ہوتی, مرتی اور کنتی نسیا منسیا, لوگ مجھے بھول جاتے, میں کیوں پیدا ہوئی. اپنے آپ پہ وہ تر رحم کھایا کرتے تھے کہ اللہ اس دنیا کے سمندر میں تو نے ہمیں پھینک دیا, اب بس بچیں گے تبھی جب پورے متقی بنیں گے. ابو ذر کو ایک بار اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر بہت اپنی کمر کو کس لو, سفر بڑا گہرا ہے, اور اپنے اعمال کا حساب کرو کیونکہ حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے. طویل روایت ہے جس میں یہ دو لفظ آتے ہیں. ہم کیسے بچیں گے؟ آپ دیکھیے, اب یہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کتنی سیکورٹی سے بچ نکلنا. آپ کسی بھی جگہ, ابھی ہم یہاں آ رہے تھے ہمارے پاس لیپ ٹاپ تھا تو بیچ میں نماز کا وقت تھا تو ہمیں حرم میں نہیں جانے دے رہے تھے, ایسا ہی تھا نا. ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا, ان کو نہیں سمجھ یا جو بھی تھا, تو ہمیں مشکل ہوئی نا. لوگ چیزیں چھپا چھپا کے لے کے جاتے ہیں, ایئرپورٹس پہ دیکھے, ہینڈ کیریز میں دیکھی, اندر کا سامان باہر کا سامان. ابھی ایک دلچسپ سی بات یاد آ گئی, یہ ایسی آخری ٹرپ میں تھی تو جہاز کے اندر پہنچنے والے تھے تو ایک بندہ فون پہ بات کر رہا تھا, ارے وہ رکشے والے کو بھیج دو. میں نے اس کو روکا ہوا تھا کہ شاید اچار پھنس گیا تو پھر واپس جائے گا, لیکن وہ نکل گئے. یہ آپ پنجابی ہمارے پاکستانی بھائی تھے تو اب وہ جہاز وہ دروازے میں جہاز کے کھڑا ہے. باقی میں نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سن لیا کہ یہ اپنے سامان میں کہیں نہ کہیں اچار لے گیا, تو اب رکشے والے کو کہہ رہا تم جاؤ. اب وہ دنیا کے میں تو اچار چلا گیا نا جو منع تھا, لیکن اللہ کے ہمارا کیا بنے گا. سچی بات ہے, یہ سارا کچھ سوچ کے تو دل کرتا ہے کہ بس اللہ کے ساتھ لپٹ جائے کہ اللہ تو بس, میں نہیں بچ سکتی, کوئی سکینر ایسا نہیں ہے تیرے کہ جس میں سے میں بچ جاؤں. دنیا میں تو کتنا کرتے ہیں یہ لوگ کوشش, پھر بھی بچ جاتے ہیں, زیادہ بچتے ہیں, پکڑے تو ہم کم جاتے ہیں. اوور ویٹ کہہ لیجئے, پروہیبیٹڈ آئٹمس کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, इतनी सिक्योरिटीज हैं। आज आप यहाँ से जरा बाहर निकले, लंदन से आप अमेरिका जब सफर करते हैं या अमेरिका के विद इन करते हैं, इतनी सख्त उनके पास अब मशीन है कि बस वो आपको उस मशीन से गुजारते हैं। भाई ये क्या आपको गुजारते हैं, कोई बंदा नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक मशीन लगी हुई है। वो क्या कहते हैं, वो आपके जिस्म की हड्डियों को भी अंदर से देख के ले जाती है कि आप जिस्म के अंदर तो नहीं कुछ छुपा रहे। अभी जब मेरी ये ट्रिप था अभी आने के लिए, तो उसने इत्तेफाक देखे 23 मार्च था, हम लाहौर से कराची के लिए जब गाड़ी में बैठे तो रास्ते में हमारी गाड़ी रोक ली ना पुलिस ने, तो पहरा बहुत था, तो उन्होंने कहा जी सामान चेक कराएं, तो जो ड्राइवर था तो उसको कहने लगा वो आदमी कि इसमें से सूटकेस खोलो क्या इसमें, उन्होंने कहा कि ये कराची जा रहे हैं आगे उम्रे पे जा रहे हैं ये वो, तो कहता जी बात मुझे पता है लेकिन बस कोई एक सूटकेस चेक करा दो। आदमी अच्छा था जो पुलिस वाला था, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपका क्या ख्याल है कि हम इसमें क्या लेके जा सकते हैं, कहता बाजी आपको पता है 2 दिन पहले एक औरत 60 बोतलें शराब की लेके जा रही थी, क्योंकि ये 23 मार्च की छुट्टी आ रही है तो हल्ला गुल्ला करना है। तो भाजी फिर हम बताएं, हम सिर्फ नाम का उनको बताने के लिए आपका चेक करने लगे हैं कि हमने बस ऐसे, उसने थोड़ी सी जिप खोल के कहा जाओ जाओ मैं कह दूंगा मैंने देख लिया। यानी ये लोगों का हाल है कि लोग इस तरह की चीजें लेते हैं तो फिर बदनामी तो होती है ना, तो अल्लाह क्या हमारा क्या मुकाम होगा, ये सब हम सोच लेना तो मेरा लगे हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। कोई बात आप शेयर करना चाहें जी।
जब एक इंसान कुछ करता है तो बाकियों के लिए भी जाहिर है बदनामी भी होती है और उनकी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं। यहाँ एक वाक्य हुआ था कि एक फैमिली के एक से ज्यादा लोग थे, वो जहाज में सऊदी अरब आए थे पाकिस्तान से, जहाज में कुछ खा पी नहीं रहे थे तो बंगले वाले उनको थोड़ी तशवीश हुई, उसके बाद वो उनको सीधा दूसरी साइड पर ले गए। उनसे जाके पूछा कि आपने जहाज में बिल्कुल किसी बंदे ने किसी चीज को टच नहीं किया, क्या वजह थी? हम आपको अब जाने नहीं देंगे। उन्होंने उनको स्कैनर में ले गए और उनको चेक किया तो उनके उन्होंने कैप्सूल के अंदर यूरिन भर के खाया हुआ था। उससे पहले पूरा वो उन्होंने अपना जैसे पेट साफ करो किया, पूरा वो खा के यहाँ आकर उन्हें पूरा वो निकालना था और उन्होंने उनको वहां रखा, उसके बाद पूरा उनके वो निकाला गया। इतनी बदनामी हमारी मुसलमान और पाकिस्तान की जो हुई थी उस वक्त,
तो आप देखिए फिर कयामत के दिन क्या कुछ नहीं हो रहा होगा वहाँ। जी आप
छोटा सा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगी कि मैं कुरान से जुड़ने से पहले मैं भी ड्यूटी फ्री शॉप पे एयरपोर्ट पे काम करती थी, तो वहाँ पे हमारा ऐसा था कि वेडनेसडे और सैटरडे को पाकिस्तान फ्लाइट जाती थी। यकीन मानिए तब तो खैर हमारा इस दिन के साथ इतना ताल्लुक नहीं था, इवन देन शर्मिंदगी होती थी कि उस दिन शराब एक्स्ट्रा फिल होती थी कि इसलिए कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा शराब बिक के जाती है उस एयरलाइन में। और मैंने खुद उधर देखा है कि एक लड़का जो पाकिस्तान शादी करने के लिए जा रहा है वो 50 बॉटल्स विस्की की वहां से खरीद के लेके जाता है, और सभी को पता है वहां पे कि आज वेडनेसडे, उन्होंने अपने रूटीन ही ऐसे बनाई हुई, उन्हें पता है कि आज सबसे ज्यादा बिकनी है, तो इस वजह से हम लोगों ने नए जो लगानी वो शराब की बॉटल्स वो ये 2 दिनों में ही लगेगी।
यदि अब आप देख सकते हैं ना कि फिर हमारा किरदार हमें लोगों को क्या दिखाता है और हमारा इस्लाम क्या है, तो कहना पड़ता है ना कि फिर आज मुसलमान कुछ और है और कुरान कुछ और है। तो बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तकवा भी दे और अखलाक भी दे, और जब ये दो चीज़ें आती हैं ना तो बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं, इनकी कमी फिर बाकी चीज़ों में झलती है। अगली भी बात पढ़ लेते हैं साथ ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, झगड़ा और झूठ छोड़ देना और अच्छा अखलाक अपनाना। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ाइमुन, मैं ज़ामिन हूँ, जैसे मैं इसकी गारंटी देता हूँ, किस बात की, बी बैतिन फी रुबदिल जन्नति लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहक्कन व बी बैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कज़िबा व इन काना माज़िखन वबी बैतिन फी आलल जन्नति लिमन हसुना खुलुकहु। दोहराइएगा मेरे साथ, अना ज़ाइमुन बी बैतिन फी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ वैन काना मुहक्कन वबी बैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कजीबा वैन काना माज़िहन वबी बैतिन فی آل الجنتی لیمن حسنا خلقہ. میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا. نوٹ کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گارنٹی کیا ہے کہ جو جھگڑا چھوڑ دے کب, جبکہ وہ حق پہ ہے, یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا میں حق پہ تھا, بولتا تو ہو سکتا ہے مجھے اپنا حق مل جاتا لیکن بولنے میں جھگڑا ہو سکتا ہے, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو میں اس کو جنت کے ارد گرد میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور دوسرا جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا اسے جنت کے وسط میں گھر ملے گا. بعض دفعہ لوگ صرف جسٹ فار جوک کہتے ہیں نا, جسٹ فار فن, ہنسی مذاق میں جھوٹ کر بول دیتے ہیں, تو اس کی بات آ رہی ہے. اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا اسے جنت کے اوپر والے حصے میں گھر ملے گا. اب آپ دیکھیے اس میں کتنی خوبصورت بات ہے. پہلے تو مجھے یہاں لفظ زعیم بہت اٹریکٹ کر رہا ہے. اللہ کے نبی عام طور پہ لوگوں کو فتوے نہیں دیتے تھے یا ذمہ داری نہیں لیتے تھے, اس میں آپ ذمہ داری لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ جس نے یہ عمل کیا پھر میں اس کی سفارش کر دوں گا. قرآن میں یا حدیث کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی قیامت کے دن جو ہوں گے وہ گھبرا رہے ہوں گے. سفارش انہی کی کریں گے جن کی اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اور سفارش کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں کہ بات مانی جائے کہ نہیں. سمجھ آتی ہے نا بات؟ لیکن یہاں سفارش بھی نہیں ہے, زعیم کا لفظ ہے. جیسے آپ آج کی زبان میں کہ گارنٹی دیتا ہوں میں اس بات کی, دو لوگ کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تیسرے کی گارنٹی دلواتے ہیں کہ اچھا یہ کام نہ ہو سکا تو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ پھر آپ کس کے ان پہ پے کریں گے, ضمانت دینا جس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی اپنے اوپر لے رہے ہیں کس کام کو؟ اب ذرا نوٹ کیجئے کام کتنے مشکل ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ حق پہ تھے, رائٹ تھے, آپ کا رائٹ بنتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں چھوڑو جھگڑا ہوگا تو میں نہیں حق لیتا. لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ مسکین بیچارہ, لو بدھو, لو بولتا بولنا نہیں آتا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی بات کا دفاع نہیں کرنا آتا, چھوڑ دیں گے. ہاں پھر مذاق میں جھوٹ کتنا عام ہے. عام طور پہ لوگ جھوٹ بول کے کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا, اپریل فول بنانا. ہاں اور پھر تیسری بات ہے اچھے اخلاق والے کو جنت کے اوپر والے حصے میں گھر ملے گا. اب یہ جو ہے نا کہ گرد و نواح میں ملے گا, بیچ میں ملے گا, اوپر میں ملے گا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نوز دی بیسٹ, رغبت دلائی جا رہی ہے, یا ڈفرینٹ لوکیلٹیز ہیں, کوئی زیادہ اچھی ہے کوئی کم ہے. لیکن پتہ کیا چلا کہ مسلمان سے لڑائی جھگڑے کو کفر قرار دیا گیا اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سورۃ آل عمران آیت 61 میں. جھوٹ کی مذمت بہت ساری حدیثوں سے بھی ثابت ہے. تین کاموں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی. کون سے ہیں تین کام؟ ایک دوران جنگ, دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے, اور تیسرے شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تین چیزیں دیکھیے کہ جس میں اجازت ہے. یہ بھی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ ایک رول کو بس اوپر لگا نہیں دیا بلکہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے مختلف طریقے سے پیش بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ انسانی معاملات کا معاملہ بہت سنجیدہ. اچھا آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں, ابھی تک کتنی چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے پاس ٹوٹل لسٹ میں؟ جی جو پہلے کر چکے اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے دوبارہ, یعنی اس میں صرف نئی چیز ڈالیں گے, جیسے جھگڑا ڈال لیں گے پھر جھوٹ چھوڑ. آپ نوٹ کر کے دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس میں میجورٹی لوگوں سے متعلقات میں حقوق العباد کی ہے. یعنی جنت میں جانا بعض لوگ سوچتے ہیں اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ جائیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق تو اکثر ہی لوگوں کا اچھا ہوتا ہے, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, حج عمرے کا بھی شوق ہے. سب سے بڑا جو ہمارا امتحان ہوتا ہے وہ جب ہم لوگوں کی عدالت میں آتے ہیں. اور میں اس کو تھوڑا اور بھی الیبوریٹ کر دوں, لوگوں میں سے بھی وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں. غیروں سے ہیلو ہائے بائے کیا حال ہے اسمائل, گھر میں جاتے ہمارا موڈ بدل جاتا ہے. بیوی شوہر ماں بہن ساس نان بہو رشتے یہ کیوں بگڑتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ بد اخلاقی کرتے ہیں. तो आप देखिए कि आप, मुझे ऐसे फील हो रहा है, मैं अपने तसव्वुर में सोच रही हूँ कि जन्नत है सामने, मैं इधर खड़ी हूँ और बीच में जो पुल है ना, ये हुकुकुल इबाद का, लोगों के मामलात हमें रोकेंगे। और आपको ये बात पहले तफसीर की क्लासेस में बताई गई है कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला सारे मामले साफ कराएगा ना, जन्नत में होगा पुल सरात है बीच में, सबको पता है पुल सरात पे फैसले हो जाएंगे, जिन्होंने कट के जहन्नुम में गिरना है, जिन्होंने जन्नत में जाना है, डिटेल्स आप सुन चुके हैं, नहीं सुन चुके तो पढ़ लीजिए किताबों जो कियामत का बयान है और इस तरह की, उस बुक्स में बहुत डिटेल से बात हुई है। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये पुल सरात है, इधर जन्नत है इधर जहन्नम है, पुल सरात का जो बिल्कुल आखिरी सिर है ना वो कंतरा है, और वहां रोक लिए जाएंगे लोग, किस लिए, हुकूक अल इबाद पूरे करो, सारे मामले क्लियर। जैसे ही जैसे आप एयरपोर्ट पे गए, आपको बोर्डिंग पास भी मिल गया, लगेज भी चला गया, टैग भी मिल गए, आप वहां से चल के आगे जाके अपना हैंड कैरी स्कैन भी करा चुके, आपको उन्होंने वेटिंग में करा दिया, लेकिन जहाज के पास आपको रोक लिया, इतने मरे, वहां जाके कहा जाएगा बताओ लोगों के साथ क्या करके, और वहां लोगों के फिर तस्वीर होंगे, लोग इससे हक मांगेंगे, इसने मेरा हक देना है, वो कहेगा क्यों, इसलिए कि मुझे जन्नत चाहिए, वो कहेगा अच्छा मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे पास तो नेकियां खत्म हो जाएंगी। हदीस में आता है ना कि बिल्कुल जन्नत के बाहर दो लोग झगड़ रहे होंगे, एक दूसरे से हक मांग रहा होगा, दूसरा दे नहीं पा रहा, फिर अल्लाह ताला उनको बुलवाएंगे कि दूर एक महल है जन्नत में, वो दिखाएंगे तुम्हें वो चाहिए, कहेगा जी अल्लाह चाहिए इसीलिए तो इससे नेकियां मांग रहा हूँ, वो कहेगा हाँ मुझे भी चाहिए इसीलिए तो इसको अपनी नेकियां नहीं दे रहा, कहा अच्छा अगर तुम्हें एक तरीका बताऊं कि तुम्हें ये महल मिल जाए तो इसको माफ कर दोगे, कहा मुझे कोई परवाह नहीं हुआ नहीं, कहा अच्छा इसको माफ कर दो, तुम इसको माफ कर दो तुम्हारे इस अमल पे वो अजर मिल जाएगा, अच्छा मैं इसको माफ करता हूँ, जो ही उसको माफ किया जाएगा तो उसके ऊपर जो गुना था ना, यानी जो रास्ते की रुकावट थी ना वो दूर हो गई और वो भी जन्नत में चला गया, यानी जिसने माफ किया उसको माफ करने के इनाम में वो महल मिल गया, और जिसने ज्यादती की हुई थी उसके ऊपर से ज्यादती जब हटी तो वो जन्नत को, उस महल को डिजर्व करता है। तो अल्लाह के नबी स्माइल देते हैं, आप चेहरा आपका मुस्कुराया कि दांत दिखे कि आपने, मैं देख रहा हूं कि वही दोनों झगड़ने वाले हाथों में हाथ डाले उस महल की तरफ जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये चीजें आम कर दें तो हमारे घरों के, हमारे मुल्कों के सियासी, दीनी, मजहबी सब मसले खत्म हो जाएं। अब तो लोग दीन के नाम पे ज्यादा झगड़ते हैं, सियासी बयानात में लोग एक दूसरे पे ज्यादा बातें करते हैं, आज हम इस दीन के इल्म को आम ना करके अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और इंसानियत पे भी जुल्म कर रहे हैं। अगर हम मुसलमानों ने ये खूबसूरत दीन लोगों को दिया होता ना तो इसके साथ लोगों के दिलों में हकीकत में बहुत जगह इस्लाम के लिए बन जाती। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी अमल आज की इस नशिस्त का कर लेते हैं कि किसको जन्नत की खुशखबरी है, जो अल्लाह ताला के 99 नाम यानी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को शुमार करेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया, आप लोग दोहराइएगा मेरे साथ हदीस को, इन्ना लिल्लाही ताला तिसअतन وتسعين أسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إن بشك لله تعالى الله تعالى کے لئے تسعتن نو و تسعین اور نوے مراد کیا ہے 99 یعنی 99 اسمن نام ہے मियतन इल्ला वाहिदन दोबारा दोहराया गया कि 100 में से एक कम यानी 99 से मुराद क्या कि 100 में से एक नम कम मन जिसने अहसाहा शुमार किया इनको दखल अल जन्ना वो दाखिल होगा जन्नत में। ये बुखारी की रिवायत है। ये वही नाम है जिनको हम अस्माए हुस्ना कहते हैं। अब देखिए इनमें एक नाम तो है अल्लाह, लफ्ज अल्लाह जो है ना ये अल्लाह ताला का जाती नाम है, जैसे आप में से हर एक का एक नाम है ना, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई किसी और नाम से भी पुकारता है, पिक जी निक नेम्स हैं, प्यार के नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, तो अल्लाह ताला का जाती नाम अल्लाह, ठीक है, बाकी सब सिफाती नाम है। यहाँ हदीस में शुमार करने का मतलब है इन पर ईमान लाना या इनको गिनना और इन्हें एक एक करके बतौर तबरुक इखलास के साथ पढ़ना। पहली बात क्या, पढ़ना, एक्साम में क्या कुछ आता है, नंबर एक पढ़ना अच्छे तरीके से बरकत के लिए, फिर इन्हें हिफ्स करना यानी जुबानी याद करना, मेमोराइज करना, फिर इनके मानी को जानना यानी इसके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग लेना, और इन से अपने आप को मुत्तसिफ करना। ये आखिरी का क्या मतलब है? इन से अपने आप को मुत्तसिफ करना, इसे मुराद है कि अल्लाह सुब्हान तआला की वो सिफात अपने अंदर लाने की कोशिश करना। जैसे अल्लाह तआला अल हलीम है तो हम अपने अंदर हिल्म पैदा करें, अल्लाह सुब्हान तआला रज़ाक है तो हम दूसरों को खिलाएं ताकि हम भी बने, अल्लाह तआला अल वहाब है तो हम देने वाले बने। और ये जो अस्माउल हुस्ना की सीरीज है, हमारी हर नाम के अंदर हमने एंड पे यही डिस्कस किया हुआ है कि हम अपने अंदर ये खूबियां कैसे लाएं, अल्लाह का ये नाम हमसे क्या तकाजा करता है। तो ये सब करेंगे तो फिर जन्नत की खुशखबरी है। बाज रिवायत में 99 नामों का को जिक्र भी किया गया, लेकिन ये रिवायात ज़ईफ़ हैं और उलमा ने इन्हें मदरज यानी रावियों का इजाफा करार दिया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हिस्सा नहीं है। और उलमा ने यह भी वजाहत की कि अल्लाह के नामों की तादाद 99 में मुनहसर नहीं बल्कि इससे ज्यादा है। यानी खुलासा क्या है कि अल्लाह के अल्लाह सुब्हान तआला के 99 यानी 99 से ज्यादा नाम है, बल्कि सही अहादीस और कुरान से इस वक्त 200 से ज्यादा नाम मिल चुके हैं। और वक्त के साथ अभी और जब इल्म आएंगे तो और भी निकलेंगे, लेकिन कम अज कम 99 99 नेम है। अच्छा, अल्लाह के नाम पढ़ लें इससे क्या होगा? देखिए, अल्लाह का एक नाम आप समझ जाते हैं ना तो आपका दिल बदल जाता है। मैं अब जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, अगर आप मुझसे कोई भी कोई पूछे कि कुरान की तफसीर के बाद कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है या जब मैंने पढ़ाया तो मैंने इंजॉय किया, तो वह अस्माउल हुस्ना। हालांकि बहुत पहले पढ़ाया था, उसमें कोई इतनी बहुत अच्छी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है, लेकिन अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है। और जहां भी उस कोर्स को किया गया उससे पता क्या चला कि दिल बदल जाते हैं, क्योंकि अपने बनाने वाले खालिक और मालिक उसकी निशानी उसकी उसकी मार्फत मिल जाए और क्या चाहिए। हम सारी जिंदगी अपने आप को खपाते रहते हैं ना दुनिया में। आप देखिए, जिस चीज़ की हमारे दिल में कदर होती है हमारी सारी एफर्ट्स और कोशिश उसके लिए जाती है ना। आज हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते भला? हमें पता ही नहीं अल्लाह है कौन। हम अल्लाह के सिवा दूसरों से रिस्क मांग रहे हैं या अल्लाह के सिवा दूसरों के ऊपर नजरें लगाते हैं क्योंकि अल्लाह क्या रज़ाक होने का नहीं पता। हम अल्लाह के अल-वहाब होने को अगर जानते हों तो हम कभी दूसरों से कभी ना मांगे। अल्लाह के अल-करीम होने को जाने तो हम खुद भी करीम हो जाएं। तो वही बात तीन दफा जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दी कि वमा कदरुल्लाह हक कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर का वो हक ही नहीं दिया जो कि देना चाहिए। तो शिर्क होता भी तब है जब अल्लाह की कदर नहीं होती। तो यहाँ पे अब हमारी लिस्ट कितने लोगों की पूरी हुई सदब जी? चलिए दोहरा लेते हैं जरा एक दफा सारे, बोलिए पहली सिफत क्या थी? जुबान की हिफाजत करनी है। दूसरी शर्मगाह की हिफाजत, सभी बोल दें। तीसरी घर में कसरत, घर में रहना जी। चौथी चीज अपने गुनाहों पर रोना, अकेले में भी और दूसरों के बीच में अल्लाह से डरना, मियाना रवि इख्तियार करना, अदल करना, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, अच्छा अखलाक करना, और क्या होता है उसकी लंबी लिस्ट है, हाँ? फिर झूठ झगड़ा छोड़ना, फिर झूठ छोड़ देना, फिर अच्छा अखलाक उसमें आ गया था, और फिर अल्लाह ताला के 99 नाम। अब आप देखिए जी, जी 12 सिफात हमने पढ़ ली, तो आप देखिए कि इसको एलेबोरेट कर लें। अगर एक एक के अंदर की चीजों को देखें तो इसमें मेरे हाल में 20 चीजें एक एक के अंदर आती हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या जन्नत में जाना आसान है? जन्नत में जाना आसान नहीं है। ये लोग समझते हैं कि आसान है, ये आसान नहीं है। हम सोचते हैं हम हंस के दिखा देंगे, स्माइल दे देंगे, मुस्कुरा देंगे। यहां से तो आपको जाने नहीं कोई देता। हरम के दरवाजे पे आप खड़े, आप स्माइल करें, आप कुछ भी करें, वो नहीं जाने देते। आपके पास पेपर्स पूरे ना हो, एयरपोर्ट पे आके स्माइल करें कि आप उनको ड्रिंक पेश कर दें, जाने देते हैं जहाज में?
नहीं।
टिकट ठीक ना हो, लगेज ओवर हो, जाने देते हैं? तो जन्नत में अल्लाह ने कैसे जाने देना? ये वो मालिक है, उसका फैसला है। मुझे और आपको फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, कमेंट्स देने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अपने लिए ये फिक्र करें जो हजरत उमर को थी कि जब तक मेरा जन्नत में एक पाऊं है, दूसरा भी ना चला जाए, मैं तब भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। वहां से भी कहा जा सकता है बाहर जाओ। तो आज हमने आसान समझा हुआ है, अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इस जन्नत को पाने की तैयारी करने वाला, कोशिश करने वाला बना दे। और हकीकत ये है कि जिसने जन्नत की तलब रखी, दुनिया उसकी खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। हम दुनिया बनाने में खप जाते हैं, वो जन्नत हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इतना काफी आज के लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।